سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بہت سے پڑھتے تھے، یہ چیزیں آئی ہیں کتابوں میں. تو اللہ کی تسبیح اور ہم دونوں کو ملا لینا، اس کا خاص دخل بھی ہے رزق کی وسعت میں. اسی لیے جن لوگوں کو رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے، جب وہ کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں تو رزق ان کا بڑھ جاتا ہے. اور اس کی دلی حدیث میں بھی، اس لیے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی اور خود تلقین فرما دی، باقی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بتائی ہوئی چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس درجے تک پہنچے. بہت سی چیزیں ہیں، مشائخ کا الہام ہے، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلاً حضرت ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی کہ جو دعا ہے حزب البحر، اگر کوئی آدمی واقعی بزرگوں کی اجازت سے پڑھے تو جسم پہ اس کے اثرات باقاعدہ پڑتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بعض روحانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دعا سے مل جاتی ہیں اور اس کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے ناخن گل جاتے ہیں، یا کوئی ناخن گلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہوا کہ اس روحانیت کا اثر اس انسان تک پہنچا ہے. ان سب چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس کے ساتھ بزرگوں کی کوئی چیز دور دور تک لگا نہیں کھاتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو قطعی چیزیں، اور حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کے ہمراہ ہوں گے ایک پلے میں بند ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں اتنی گرانی ہو جائے گی یا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ بکری یا گائے کا سر جو ہے یہ 100 روپے میں ملے، جو بھی سکا اس وقت چل رہا ہوگا، ڈالر ہوگا تو 100 ڈالر میں ملے گا. اگر اس وقت کا سکا کوئی اور ہوا، ایسی جنگ ہو گئی اور سب تباہی ہو گئی اور ایک نئی دنیا آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا اس وقت جو بھی سکا چلے گا 100 روپے میں ایک گائے کا سر اس وقت ملے گا. اور قلعے کے اندر اور آپ جانے کی کوئی صورت رہے گی نہیں. تو صحابہ کے نام نے پوچھا اللہ کے رسول کے پھر لوگوں کا کیا ہوگا کھانے پینے کا، تو آپ نے فرمایا ان کی غذا وہی ہوگی جو فرشتوں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں غذا کی ضرورت ہے. اسی بات کو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بتائیں گے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اور فرشتوں کا جسم جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ جو فرشتوں کی غذا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان کی غذا کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یہ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے. تو فرشتوں کی غذا یہ تسبیح ہے، اس سے انہیں خوراک ملے گی. اسی لیے آدمیوں کے متعلق کی گئی ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اور حمد یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھے گا اسے بھی خوراک ملے گی، یعنی اس کی رزق اس کے رزق میں وسعت آئے گی. تیسری چیز کروا دی کہ جو مومن ہوں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے بڑی تفصیل سے اس کی مسئلہ عرض کیا تھا. تو لیکن یہ بات پھر خیال کرنے کی ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات عرش پر ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان فرشتوں کو پھر اس پر ایمان لانے کے لیے ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر فرشتوں کا تو ایمان بھی غائب نہ ہوا، وہ تو ایمان بھی مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا خود تعریف کر دی ان کی، یوم نبی، وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اس کی تعریف کا کیا ہوگا ہو اس لیے مفسرین نے یہاں پر بہت اچھا لکھا ہے صاحب کشاف نے لکھا ہے اور اس سے امام راضی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے اور راضی نے بے حد پسند کیا ہے اس چیز کو کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اعلیٰ کاموں کے لیے ایسے ہی درائل کے محتاج ہوتے ہیں جیسے انسان درائل کے باپ کو سمجھتا ہے فرشتے اپنے درجے میں درائل کے باپ کو سمجھتے ہیں اور اللہ کو ایمان لاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں تو یوم نبی کی اللہ پر ایمان جو رکھتے ہیں تو فرشتوں کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہے اللہ کا عرش وہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے اتنی زبردست مخلوق ہے کہ وہ اس ساری کائنات سے بھی بڑھ کر کوئی چیز اور اللہ کو عرش اس کا جسم ہے اور اس عرش میں احساس ہے احساس تو خیر ہر چیز نہیں ہے پتھر میں بھی احساس ہے پتھر بھی محسوس کرتا ہے پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرتا ہو تو پھر مجھے بتاتا ہے کہ گزرا کہ نہیں گزرا تو یہ چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں اسی طرح یہ عرش ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے عرش میں جا کر چیزیں جذب ہو جاتی ہیں عرش کے گردوں پہ جو فرشتے ہیں جو سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیر رکھا ہے فضل المعراج کی طرح اور تم دیکھو گے یعنی قیامت کے دن کہ اللہ کے فرشتے چمٹے ہوئے ہیں خدا کے عرش سے ایک گمراہ تھے وہ بھی مولوی صاحب تو وہ اس آیت کو پڑھتے تھے فضل المعراج کا اور آپ دیکھتے ہیں عربی زبان میں مضارع کا جو سیگا ہوتا ہے اس کا دونوں قبضہ طرح ترجمہ کیا جاتا ہے حال سے بھی مستقبل سے عربی میں یہ جو سب فرعون ہے جس کا فرعون ہے اس طرح جتنی چیزیں آتی ہیں اس کا ترجمہ دونوں ہوتے ہیں حال سے بھی اور مستقبل سے بھی تو عبارت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر معانی میں کیا مراد ہے حال مراد ہے یا یہ کہ فیوچر مراد ہے تو وہ اس طرح کا ملائکہ اور تم دیکھو گے اللہ کے فرشتوں کو اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش سے چمٹے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے یوں نگاہ اٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نگاہ مبارکہ عرش تک پہنچتی تھی دیکھ لیتے تھے فرشتوں کو یہ قرآن کہتا ہے تو وہ اس سے لوگ سر مجھتے تھے کہ واقعی زبردست بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عرش کو آسمانوں کو چیز کے عرش تک پہنچ جاتی تھی یوں ہوا کرتا تھا کوئی پوچھتا مولانا اگر یہ قرآن جی سے ثابت یہی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس کے انکار کرتے تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا مفسرین اس کو قیامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اسے دیکھیں گے یہ ہے قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرنا اور اپنے گمراہ ان عقائد کو قرآن سے ثابت کرنا محض بچوں کے کھیل اور تماشے سے اسی لیے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی ہوگی اس کتاب سے اور دودھ سے دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ جو امت تباہ ہو جائے گی قرآن کی وجہ سے اور دودھ کی وجہ سے صحابہ کے الزام عرض کیا کہ اللہ کے رسول جی کس طرح تباہ ہوں گے تو آپ نے فرمایا قرآن کی تفسیر وہ بیان کریں گے جو اللہ نے نہیں کہا اللہ کی مراد یہ نہیں تھی تو یہ اپنے پاس سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے ہے تو بڑی شرم کی بات اور جی نہیں چاہتا اس سے کہیں بھلے یا رب اللہ لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کے سامنے یہ بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے پوری ہوتی कैसे लोग गुमराह होते हैं खुदा की किताब की गलत तफसीर और तशरीह करें। अभी कुछ ही अर्सा पहले किताब छपी तो जिन्होंने वो किताब छापी है उन्होंने उसके साथ सीडी भी डाल दी कि पाकिस्तान में कम से कम पहली बार गांव में देखा यूरोप में तो आम है बाकी दुनिया में कि वो कोई किताब छापते हैं उसके साथ सीडी भी भेज देते हैं कि तुम सुन लो इसमें लिखी है ये तकरीर प्लान की तो ये तकरीर उसमें भी है डीवीडी भेज देते हैं कि इस किताब में वाकया है और उस वाकये की ऐनी शहादत ये है फिल्म उसकी ये है साथ दे दे तो वो जो उसके साथ सीडी भेजी और किताब में भेजी तो वलियाजुबिल्ला अंदाजा नहीं था और आपको भी बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि अब इस उम्मत में ऐसे गुमराह और ऐसे बदबख्त भी पैदा हो गए और सीडी में वो साहब अपने मुरीदों से बातें कर रहे हैं और मुरीदों को समझा रहे हैं और बदाही को हमारे मदारिस के पढ़े हुए बच्चा खासा अपने आप को उसने पीर बनाया और खवातीन के मामले में वो इस हद तक गिर गया कि वो उसने अपने हलके में लोगों से कहा कि खवातीन से कि दम करूंगा तो तुम्हारी ये बीमारियां दूर हो जाए और माज अल्लाह समझ ही सकते हैं कि वो क्या करता है कि कपड़े करवा के दम कर और दलील ये भी कुरान से और सिवा अल्लाह ने इसकी किताब में कहा है कि जब मरियम एक कोने पे हो गई फतमसल रहा बशरन सबिया तो जिब्रील अमीन फरिश्ते की सूरत में उसके सामने आ गए और जिब्रील ने मरियम पर दम किया तो सिवा देखो कुरान से साबित होता है या नहीं मैं करता हूं ये कुफर की जुमले और कुफर की बातें हैं और किताब भरी पड़ी है ऐसी चीजों से अंदाजा नहीं था कि उम्मत में ऐसे बदबख्त भी पैदा हो जाएंगे उसने इस्तदलाल कुरान से किया और ये कर दूसरा था ये है हाल कि इसकी किताब में हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मत तबाह हो जाएगी दो चीजों से दूध से और इस किताब से तो जो खुदा की किताब की ऐसी तशरीह करने लगे कि कुफर है तो कुफर नहीं है तो और क्या है इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि अभी जिस तरह कुरान के नाजिल होने पर मुझे एक गिरोह से लड़ना पड़ा है जो वही का इंकार करते हैं तुम्हें भी इसी तरह लड़ना पड़ेगा एक गिरोह से जो कुरान की तफसीर गलत करें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु गढ़े वो खारजी थे जो काफिरों की आयात को मुसलमानों पर लगाते थे अब भी वो लोग मौजूद हैं जरा इन्हें टटोलें और इनके बीच में जाएं तो वो कुरान की आयत पढ़ते हैं अल्लाह ने कहा कुरान में मल्लम के आपको विवाद मुंतजल्लाह अल्लाह का हुक्म काफिरून और जो कोई खुदा के उतारे हुए हुक्मों के मुताबिक फैसले नहीं करता ये सब काफिर है मल्लम के आपको विवाद मुंतजल्लाह और जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसले नहीं करते ये सब काफिर है ये सब जालिम है अरे मेरी ये तीनों आयात अल्लाह ने जो नाजिल की हैं एक ईसाइयों के लिए एक यहूदियों के लिए इस उम्मत के लिए अल्लाह ने कुरान के मुताबिक और इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला न करने वालों को काफिर नहीं कहा एक आदमी मानता है खुदा की किताब को फैसला उसके मुताबिक नहीं करता वो फासिक है वो जालिम है गुनाहगार है काफिर कहां से हो गया कि जितने भी मुसलमानों को कत्ल करने के डर गए हैं और इनके सारे डांडे जाके वहाबियत से मिलते हैं इसीलिए शामी ने जो हनफी फिका की मशहूर किताब है और सारे मुफ्ती उस पर फतवा देते हैं उन्होंने लिखा कि हमारे जमाने में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो जाहिर हुआ है तो इन लोगों का कोई काम नहीं है कि भाई इसके मुसलमानों को कत्ल करें और मुसलमानों को काफिर बता देते हैं कि सब काफिर। यही चीजें जो तारीख में बार बार आ रही कि किसी आदमी को वो अपने इलावा बर्दाश्त ही नहीं करते और दलील का जवाब बोली से, दलील का जवाब तलवार से, इसे भी कत्ल करो, इसे भी, इसे भी, इसे भी, सबको। सैयद अली रज़ी अल्लाह को भी ऐसी जालिमों से वास्ता पड़ गया था आदमियों को। तो ये कुरान को उसकी तशरीह गलत करने की दो मिसालें आपके सामने रखी। एक ये बदबा लाहौर शाह में बैठ करता है, मुरीद है और औरतों के साथ ये रवैया है और दलील कुरान से देता है। माशाल्लाह खुदा की किताब को खेल तमाशा नहीं बनाया तो और क्या किया है, ये है वो चीज। और दूसरे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दूर की वजह से दबाव है, क्योंकि अर्थ किया गया कैसे, तो आपने फरमाया कि वो दूर की वजह से दूर चले जाए, शहरों से दूर जाकर बड़ी बड़ी जगह आबाद होंगी, शहर से निकल के इसकी तशरीह है, दूर को खालिफ रहेगा भी तो दूर जाके भैंसे रखेंगे, बड़े बड़े प्लाट लेंगे, फिर वो दूर की वजह से जो मस्ती पैदा होगी उसका इलाज क्या होगा, फिर उससे याचना होगी। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में बात बंद कर ली, आपने सुना कि उम्मत तबाह हो जाएगी दूर की वजह से और खुदा की किताब की वजह से। दूर जिसकी इशारा फरमाया कि वो खालिफ खेला है और उसकी जिस चीज ताकत आएगी जिसमें हरारत और कुवत पैदा होगी उसको सर्व करने के लिए याची की रात पर चल पड़े। तो ये चीजें हैं जो लोग कुरान की गलत तावील करते हैं। वो बल्कि भी ये कहते थे कि अल्लाह के नबी आपका निगाह उठाते हैं, अल्लाह के अर्श तक आपकी निगाह पहुंचती है और आप देखते हैं अल्लाह के दूसरे चिमटे में। वो कहते थे कि अल्लाह के अर्श तक जिसकी निगाह पहुंचती है उसकी निगाह तो महफूज तक भी पहुंचती है, लोगों की सारी तकदीरें वो जानते हैं, कुल में गैर के बाद और आगे जितनी भी बातें कर लें। अल्लाह ने यहां पर फरमाया वो नबी और वो फरिश्ते उसको मानते हैं, भैया उसका वो फिर उन्हें जिंदगी ना हो, पर अल्लाह के फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है वो इस्तेफार करते हैं, माफी मांगते हैं, किनके लिए, उनके लिए जो ईमान वाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इसीलिए पूछा गया कि वह वो मलाए आला जो है सीमा या सिम किस चीज में मलाए आला के फरिश्ते बहस कर रहे हैं, तो आपने कहा मेरे साथ मैं नहीं जाता। कुरान में यही जगह ऐसे आता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो आलम बाला के अलावा चीजें हैं आपको उन चीजों की कोई खबर नहीं थी दुनिया में की। मसलन अल्लाह ताला ने एक जगह पर फरमाया कि वो माकुन का बेचाने भी होगा अभी इस कवीना इला मुसल्लम, हमने मूसा अलैहि सलाम पर जो वही की थी जो उनके साथ मामला किया था तो मगरबी समत में आप मौजूद नहीं थे। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि वो माकुन का बेचाने फलाम और जब मरियम की कफालत कौन करता, उनके बारे से इंतकाल उनकी पैदाइश से भी पहले हो गया था तो अब वो थी तो बहुत इज्जत वाली इमरान की बेटी थी और इमरान जो थे बैतुल मक़द्दस के इमाम इस दर्जे के आदमी थे कि अल्लाह ने उनका नाम लेके अपनी किताब में जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया कि इमरान की बीवी ने नजर मानी और उसने कहा रबी नजरतुल्लाह का माफी बसनी मोहल्ला, अल्लाह जो कुछ के मैं जन्म दूंगी उसे मैं तेरे घर की खिदमत के लिए आजाद करती हूँ। और वो संजी के बेटा होगा, फिर वो बेटी हो गई तो उन्होंने उस पर अफसोस का इजहार किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लाह आलम बिमा वज़अ, अल्लाह ही जानता है इस गजब का नसीब लेके ये बेटी पैदा हुई है, भले ही कल जकर कल उनका और अगर हम इसे बेटा दे देते तो भला वो इसकी बेटी जैसा हो सकता, बहुत नसीब की बच्ची थी और माने का ही नहीं समझे कि वहां मरियम और अल्लाह ने इसका नाम मरियम रख दी। अब ये मरियम की परवरिश कौन करे, बाप तो है और बेटी जिसकी है बाप सबको अजीज और प्यार, तो विलायत किसको हासिल हो। तो कहा विलायत की किसने करते हैं और आदमी को अपनी विलायत को जानना चाहिए कि मुझे कितनी विलायत हासिल है जितनी विलायत हासिल होती है तसव्वुर का इख्तियार उतना हुआ करता है हिदायत में कायम तीसरी जिल्द में फुकहा ने विलायत पर बहस की है और वो कहते हैं कि एक तो विलायत होती है विसुमता ताकत के जरिए बादशाह की विलायत होती है और बादशाह की विलायत पूरी मुमलिकत पर होती है और एक वो कहते हैं कि विलायत जो होती है वो करारत की वजह से होती है रिश्ते की वजह से होती है और रिश्ते की विलायत इंसान की वो होती है बाप की फिर बाप की हदूद है कि कितनी विलायत है फिर मां की विलायत होती है कि उसकी कितनी हदूद है बाप कितना डांट सकता है औलाद को और कितना नहीं डांट सकता कितना उसका इख्तियार है उतना ही तसर्रुफ है बादशाह है बादशाह की विलायत पर जब बात आती है तो क्या बादशाह इस वक्त सियासी तौर पर किसी आदमी को फांसी की सजा दे सकता है हनफी फुकहा ने बहुत तेज तरफ गए हैं और वो कहते हैं कि अगर शेखुल इस्लाम काजी गुजार अदालत ये कह दे कि सियासी तौर पर ये आदमी इस मुजरिम ऐसा मुजरिम हो गया है कि मुमलिकत में इस वजह से इंतशार फैलता है या दूसरों के साथ साथ बात करता है या मुमलिकत के असबाब और वसाइल जो अल्लाह ने सबका हक रखा है ये फेरे हड़प करना चाहता है तो इस शख्स को फांसी की सजा दी जाए क्योंकि बादशाह का तसव्वुर है पूरी विलायत पूरी मुमलिकत का फिर मां बाप की बहस करते हैं बाप का कितना इख्तियार है मां का कितना इख्तियार है चचा का कितना है मामू का कितना है ताई का कितना है खुफी का कितना है खाला का कितना है किस हद तक कोई बच्चे को डांट सकता है और किस हद तक नहीं डांट सकता क्या चीज कर सकता है क्या चीज नहीं कर सकता बच्चे को कहते हैं बच्चों का माल है बच्चों के माल में बाप तसव्वुर कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता उसकी एक मिसाल देख लीजिए वो कहते हैं कि कोई बच्चे को चीज दे जाता है तोहफा लिया है बच्चों के लिए अब ये पता है कि ये तोहफा बच्चों के लिए नहीं है ये वालिदैन के हिस्से में जब उसके यहां बेटा बेटी होगा तो हमें भी यही देना पड़ेगा जब उसके यहां कोई तकरीर होगी तो हमें भी यही चीज करना पड़ेगा वो कहते हैं कि तसव्वुर इख्तियार कर लेते एक चीज ये है कि किसी ने खास तौर पर कोई चीज बच्ची को दे दी और कहा पैसे इस बच्ची के हैं या इस बच्चे के माँ बाप को पता है कि इसका कोई हमने देना नहीं मामू दे गए चचा दे गए दादा दादी ने कोई चीज दे दी तो उसने बाप को हक हासिल नहीं है कि उस पैसे में तसर्रुफ कर सके उस पैसे को वो महफूज रखेगा हत्ता जब ये बच्चा या बच्ची बड़ा हो जाए तो इसके हवाले कर दे ये तुम्हारी अमानत है तुम्हारे दादा दादी किसी ने जिसने दी थी उसने दी हर एक इख्तियार और इसी तरह वो तसव्वुर जो है वो औलाद की मिल्कियत में जारी नहीं होता इसी के फुकहा कहते हैं कि बाप है और बेटे ने कोई चीज खरीद ली तो बाप को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी माली चीज माली नुकसान से पहुंचाए छोड़ दे बस बेटा है बस कर लीजिए कि उसने बैट खरीद लिया खेलता है कुछ आलात खरीद लिए और उसके जरिए वो जरूर पर जायज खेल खेलता है कोई गलत काम नहीं करता बाप को कोई हक हासिल नहीं है कि उसके उसका बैट तोड़ दे उसका बल्ला तोड़ दे कोई चीज तोड़ दे ये गुनाह की बात हमारे जमाने में कई एक मिसालें हैं उसकी तसव्वुर है उस्ताद है उसमें उस्ताद देखता है कि बच्चे कोई काम ऐसा कर रहे हैं और वो चीज से रोकना है अभी अभी चंद दिन हुए यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई तो उसमें किसी ने बात की कि बच्चे क्लास में मोबाइल ले आते हैं और मोबाइल पे खेलते हैं और टीचर की बात उसे इस तरह से नहीं सुनते तो क्या किया है तो किसी ने पूछा ऐसे ही कि क्या ये दुरुस्त है कि उस्ताद लेकर उस मोबाइल को तोड़ दे निकले नहीं हो सकता उस्ताद का इतना तसव्वुर कितनी विलायत बच्चे पे उसको हासिल थी उसे ये विलायत हासिल है इतना कर सकता है कि उनके मोबाइल रख ले और जब ये कोर्स पूरा होगा ना चार महीने बाद उस वक्त ले जाना ये ठीक है इतना कर सकता है तो बच्चा तो चार घंटे भी गुजार सकेगा मोबाइल के बगैर तो अकेला देगी दुकाने को भी ये तो होगा लेकिन ये नहीं हो सकता कि मोबाइल तोड़ दिया जाए तोड़ने में वो खुद गुनाहगार भी होगा उतने पैसे उनके बच्चों को अदा करने भी उसके जिम्मेदारी हो जाएंगे तो हर एक की विलायत का हक है तीसरी विलायत नफ्सी है विलायत नफ्सी का मतलब यह है कि इंसान की अपनी जान के जो उस पर इख्तियार हैं वो कितने आदमी मुतलकन अपने आप का मालिक नहीं है इसलिए इंसान ये नहीं कर सकता कि वो खुद अपनी जान को हलाक कर दे अल्लाह ने इतना इख्तियार नहीं दिया और बात कहा इसी के जिम्मे में लाते हैं और वो कहते हैं कि अतिबा अगर इस बात को तय कर दें कि यह गिजा उस इंसान के लिए मुजिर है तो फिर उस गिजा का खाना उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा एहतियात करे इलाज करे क्योंकि अपनी सेहत को नुकसान हो जाएगा ना वो कहते हैं सेहत को नुकसान पहुंचाना कैसे जायज हो सकता है ये मुमकिन नहीं किसी इंसान को इसकी इजाजत नहीं है कि अतिबा वाकई जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि इस चीज से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है सिर्फ भी इस्तेमाल करता रहे वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा इसकी तो बहस अलग है लेकिन कई फुकहा तरफ हैं कहते हैं इसके लिए जायज हो इसी तरह एक इंसान सर्दी और गर्मी है उसका ख्याल किए बगैर जोश और जज्बे में निकल जाए और अपने आप को बुखार करवा के ले आए ऐसी चीजें हो जाए फुकार पर पाबंदी लगाते हैं इसलिए तो कहते हैं किस हद तक इख्तियार है और किस हद तक इख्तियार नहीं तो ये सारी चीजें जब आदमी पढ़ता है और देखता है ना फिर ख्याल आता है कि शरीयत का निजाम कितना मजबूत है वो पूरी जिंदगी को अपने इहाते में लिया पूरी जिंदगी को खुदा की शरीयत मजबूत बना देती है तो इसलिए अल्लाह ताला ने जिन इंसानों के साथ निजाम रखे हैं इंसान की विलायत कितनी है अब वहां पर यह बहस शुरू हो गई कि बच्ची की विलायत किसके पास है इख्तियार किसके पास है हुक्मरानी किसके पास है तो उन्होंने कहा कुर्रा डालो कि इस बच्ची को मरियम को कौन पालेगा तो उन्होंने अपने कलम जिससे वो तौरात लिखते थे सारे अल्लाह के एक बंदे थे उन्होंने दरिया में बहा दिए और एक कलम जो था वो दरिया के उल्टे रुख पे चलने लगा ये उन्होंने कुर्रा डाला तो अल्लाह की तरफ से गोया उसके हक में फैसला हो गया और उसने ज़करिया अलैहि सलाम से जो बच्ची के खाल थी तो उन्होंने उस बच्ची की परवरिश की और अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लमा दखल अलैहा जबकि वो उस बच्ची के पास जाते थे वजह इंदा रिश्ता वो उसके हुजरे में देखते थे कि फल पड़े हुए हैं ताजा तो इसी में उन्होंने मरियम से पूछा कि मरियम ये तुम्हारे पास ताजा फल कहां से आते हैं मार्केट का फल नहीं मिलता मौसम का नहीं है बगैर मौसम के तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से आती तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ये है अंबिया अलैहिस्सलाम की का दिमागी इदराक और एक वाक्य से कितनी जल्दी जहन मुंतकिल हुआ और ख्याल आया कि जो अल्लाह बगैर मौसम के इस बच्ची को फल दे सकता है मौसम मेरा भी औलाद का नहीं रहा बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं बीवी बूढ़ी हो गई है मुझे भी बगैर मौसम के औलाद मिल सकती है और अल्लाह ने कहा उनसे दुआ मांगने लगे और कहने लगे कि अल्लाह जैसे ये चीज है आप मुझे कुछ औलाद इनायत फरमा दें जो मेरी और मेरे आबाजाद के अजूब की वारिस बन जाए और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें क्या है अलैहिस्सलाम इनायत फरमा दिए तो वहां भी आता है कि जो रुकाउन अकलाम जो अपने कलम दरिया में बहा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मौजूद नहीं एक जगह और भी आता है अल्लाह ताला ने कहा माफूम का ले रही इनकी शफ़त मून और आप उनको अपनी मौजूद नहीं थे जब वो आपस में बहस कर रहे थे कि मरियम को कौन पालेगा इसी तरह कुरान में आता है कि आप बताइए कि माकाना लिया मिन इल्मिन बिल मलाई आला और मुझे ये भी इल्म नहीं है कि मलाई आला के फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं वो भी वो हदीस है जो दोस्त से पहले गुजर चुकी बड़ी तफसील के साथ तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की मां से माफी मांगते हैं किस चीज की माफी मांगते हैं लिल्लज़ीना आमनू लोगों के लिए जो ईमान लाए मोमिन लोग गुनाह करते हैं जमीन पे और अल्लाह ने कहा वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है इनके लिए तौबा करते हैं इनकी तरफ से हमसे माफी मांगते हैं दरख्वास्त पेश करते रहते हैं कि अल्लाह ये ईमान वाले हैं इन्होंने गुनाह कर दिए हैं ये इसके काबिल हो गए हैं कि इन्हें अज़ाब दे अल्लाह ने माफ कर दे अल्लाह इनकी गुनाह से दर गुज़र कर दे मोमिन इतना अजीज है कि जिस मोमिन को एक मिनट में हम रुसवा कर देते हैं और उसके गुनाह की शौलत और ढंडोरा पूरी दुनिया में पीट देते हैं कि ऐसा और ऐसा है हमें कब पता चलता है कि मुमकिन है अल्लाह के वो जो फरिश्ते हैं अर्श वाले उन्होंने इसके लिए दुआ की और अल्लाह के यहां कबूल हो गई और क़यामत में इसका गुनाह सामने ही ना हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह के पास एक आदमी को लाया गया और उसकी दाढ़ी से शराब के कतरे टपक रहे थे तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से कहा गया कि इस पे हाथ जारी कर दे तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह का कोई गवाह है जिसके सामने स्थिति हो लोगों ने कहा कोई गवाह नहीं तो फरमाने लगे ले जाओ हम इसके हाथ जारी नहीं करते। उन्होंने कहा हजरत इसकी दाढ़ी से शराब के कतरे टपक रहे हैं मुंह सुन ले तो कहेंगे तुम्हें पता नहीं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजद्दुद से मना किया क्यों मुंह सुन ले जब कोई गवाह हो किसने किया है पिए फिर के बाद इतने मोहताज थे और फिर मसूद रज़ी अल्लाह ने एक अजीब बात कही उन्होंने कहा मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो गुनाह इंसान करे और लोगों में उसकी शोहरत ना हो तो तुम ये समझ जाओ कि जिस तरह अल्लाह ने यहां पर्दा डाल दिया है वो क्या मतलब पर्दा डाल दे मत उसका इजहार करो मत किसी को बताओ यही चीज यहां भी अल्लाह ने कहा जब तक फिर उन्हें जिंदगी ना मनु और वो इस्तगफार करते हैं ईमान वालों के लिए तो मोमिन आदमी जो गुनाह करता है उसकी किस तरह बख्शिश होती है बहुत तरीके हैं उसके बेशुमार इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने शेख इस्लाम रहमतुल्लाह ने एक जगह पर यह बहस की है मुस्तकिल कि मोमिन के गुनाह कैसे कैसे माफ होते हैं और उसमें से एक चीज देखिए ये भी अल्लाह ने बता दी अल्लाह ने आज मेरे रिश्ते आज उठाए हुए हैं वो तुम लोगों के गुनाहों की हमसे माफी मांगते रहते हैं कि अल्लाह ने माफ फरमा दे अल्लाह ने माफ फरमा दे अल्लाह के दरमियान और बंदे की मासीयत के दरमियान खुदा के फरिश्ते आते तो वबाल जो आना था अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं ने उस वबाल को रोक दिया इसीलिए हदीस में आया कई बार सुनाई वो हदीस थी कि हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चोर जो चोरी करता है और कोई बदकार जो बदकारी करता है उसका ईमान दिल से निकल के उसके सर पे आ जाता है और इसको बहुत अच्छी ताबीर की इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने इब्न अरबी कहते हैं कि वो ईमान जो सर पे आ जाता है इन दो गुनाहों में इसकी कि चोरी सबसे बदतर गुनाह है हुकूकुल इबाद में लोगों के हुकूक में चोरी से बदतर कोई गुनाह कि चोरी करके एक आदमी ने माल कमाया है जिस तरह दिल का पैसा है हजार जुलते वावस्था है और ये उसने से चोरी कर बदकारी इतना बड़ा गुनाह नहीं इंसानों के हक में जितना चोरी बदतर गुनाह बदकारी को कहे अल्लाह का हक है उस इंसानों को कोई कतल नहीं है माज अल्लाह एक मर्द औरत इस पेड़ पे राजी है तो इसने किसी का हक जाए नहीं हुआ उन्होंने सिर्फ अल्लाह का हक जाए किया चाहे वो शादी शुदा है चाहे वो गैर शादी शुदा अगर जबर नहीं है तो अल्लाह का हक बस उन्होंने जाए किया जरूर कर उसमें कोई हक नहीं बनता कहाने तस्लीहात की और इंसानों का सबसे बड़ा वो चोरी और खुदा का सबसे बड़ा हक नेगेटिव साइड गुनाहों में वो ये बदकारी है और पॉजिटिव साइड में इबादत में खुदा का सबसे बड़ा नमाज है जो नमाज जाहिर करता है वो खुदा का हक जाहिर करता है जो बदकारी करता है वो खुदा की सबसे बड़ी नाफरमानी अल्लाह के हक में करा करता है जो चोरी करता है वो इंसान के हक को जाहिर करता है हदीस में आता है उसका ईमान के दिल से निकल के सर पे आ जाता है इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने इसकी बड़ी अच्छी तौजीह की इब्न अरबी कहते हैं कि चोरी और रेना दोनों ऐसे गुनाह हैं कि खुदा का अजाब आ जाना चाहिए था फौरन नाजिल हो जाता खुदा का अजाब इतनी बड़ी हरकत इसने किया ईमान फौरन आ जाता है कि अल्लाह भी मैं मौजूद जैसा भी गुनाहगार है मैं भी मौजूद हूं तो खुदा के अजाब के और करने वाले के दरमियान ये ईमान आ जाता है बंदा बच्चा और इससे ये चिंता बात कुरान में आई है अल्लाह ताला ने फरमाया कि फौलादिका कुरान कहता है कि वो लोग कत्ल नहीं करते सूरह फुकान का जो आखिरी रुकू है اللہ نے شروع کیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا, اور اللہ کے بندے تو بس وہ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے ہیں. اور یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ساری خوبیاں گنوا کے اللہ نے فرمایا ولا یقتل من نفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ شریعت اس کی سزا کو کے طور پہ قتل تجویز نہ کرے. وہ کسی کو قتل نہیں کرتے, ولا یظلمون, اور بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلك, اور جو ایسا کام کرے گا یلقا اثاما, بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. اور پھر اس کی سزا ہونی تو یہ چاہیے, یضاعف لہ العذاب ضعفین, ہم دگنا عذاب دیں گے اس شخص کو جہنم کا. اور پھر اللہ نے کہا یا حسن تین معانا, اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کافروں کی طرح یہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ رکھے گے نہیں, کیونکہ کبیرہ گناہ ہے, اس کو حکم نہیں ہے. الا من تاب, ہاں جو آدمی توبہ کر لے, وہ آمنا, اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے, تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کرتوت کیے تھے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ اتنی قیامت میں انہیں نیکیاں دے. اللہ نے کہا جتنے گناہ کرتے رہے, 100 قتل کر دیے, 200 قتل کر دیے, یہ برا کام 10 مرتبہ کیا, 30 مرتبہ کیا, اللہ نے کہا اتنی نیکیاں دے دے. تو اس لیے کسی بھی گناہگار کو گناہگار کہنے سے پہلے اور مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کی تقدیر میں, قیامت میں یہی ساری چیزیں اس کی نیکی بن گئی تو کیا ہوگا. اور یہ فرشتوں کی دعا جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے, اسے لگ گئی تو قیامت میں تو یہ دھلا ہوا ہوگا, میں پکڑا جاؤں. تو آدمی اپنی فکر کرے, اپنا کام کرے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بات خیال میں آتی ہے, انہوں نے ان سے پوچھا گیا وفات سے پہلے کہ آپ کی جگہ کون آئے گا, خانقاہ کون سنبھالے گا. تو انہوں نے کہا میرے خلفاء کو کہہ اللہ تعالیٰ میں دیکھوں, تو 300 کے قریب ان کے خلفاء تھے. تو فہرست جب دکھائی گئی تو انہوں نے فہرست پڑھی اور ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا, فرمایا ان سب سے کہو اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں, میری جگہ کوئی آنے والا ہے. بعد میں جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے مل کے حضرت نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ کو ان کی جگہ پر دلی میں خانقاہ میں بٹھایا. تو وہ بات ہے کہ اپنے اپنے ایمان کی آدمی فکر کرے, دوسروں کی تفتیش بھی کیوں پڑا ہوا ہے, جب تک کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو, قاضی ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی حد جاری کرنی ہے, کوئی مقدمہ ہے, تو کوئی بات ہے. جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو آپ اپنے کام سے کام رکھے. اللہ نے کہا فرشتے کیا دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور دعا کیا مانگتے ہیں, اللہ نے یہ بھی نہ اللہ نے کہا ہم سے یہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے پروردگار آپ کا علم اور آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے اندر سمو رکھا. دعا ہی مانگی یا مانگی, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. شروع یہاں سے انہوں نے کیا کہ اے رب ہر چیز رحمت اور علم ہے تیرا, اللہ کی تعریف کی. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو کہ اللہ کی تعریف کرے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کہ رب آپ ایسے اچھے ہیں, پروردگار تیرے اتنے نام آپ ہیں, اللہ تیرے لیے تعریف ہے, اللہ تو اس کائنات کا پالنے والا ہے. خدا کی مختلف صفات کو بیان کرے, یہ دعا ہے. اور اس کے بعد اصل مطلب بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی جملے بولتے تھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد نماز میں بھی تو یہی ہے, آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک تعالیٰ جدک ولا الہ غیرک, ساری اللہ کی تعریف ہی ہے نا, کہ تیری بڑی شان ہے اے اللہ, تیرے علاوہ کوئی نہیں, اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے, آپ بڑے مہربان, آپ نہایت رحم کرنے والے, آپ قیامت کے مالک, اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آپ دعا مانگی اتنی چیزیں کہنے کے بعد ایک دن اپنے راہ پر مستقیم, اللہ سیدھی راہ پہ, کیا پروردگار سیدھی راہ پہ, نمازوں کے لیے سکھایا. اس لیے یا تو فرشتوں نے تعریف کی اور یا پھر فرشتوں نے دعا کی. دوسری تفصیل یہ بھی ہے, دعا ایسے کہ دیکھو جو کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے نا, तो वह हकीकत मांग भी रहा होता है। अब उसको आसान मिसाल से ऐसे समझ लें जैसे कोई औरतें मर्द के मांगने वाले आते हैं भिखारी चला रहे हैं कहते हैं अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, तो बजाय दुआ दे रहा है लेकिन हकीकत में वो बजाय तारीफ कर रहे लेकिन हकीकत में दुआ। इसीलिए पुकार ने लिखा है कि जो आदि बेकार भिखारी होते हैं ना वो सलाम करें तो उसका जवाब देना वाजिब नहीं। वो कहते हैं वो सलाम बड़ा ही कर रहा है, वो तो आपको मुतवज्जे कर रहा है कि मेरी कभी मेरे काम कुछ करो मुझे कुछ कहना दे दो, तो जो सलाम करते हैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं, उसको अगर आदमी ना मिले तो भी नहीं। ये है वो वजह। तो इसकी अगर दूसरी तरफ चीज मान ली जाए तो उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और उस तारीफ का माना दुआ हो गई। इसीलिए बहुत से लोग जो दुआ में सिर्फ अल्लाह की तारीफ बयान करते रहते हैं ना तो हकीकत में अल्लाह से दुआ ही मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह से कुछ ना कुछ अर्ज नहीं कर रहे होते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा फर्ज नमाज के बाद तस्बीह पढ़ लेते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व पूरा कलमा, और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत कुर्सी पढ़ लेते थे, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही अल्लाह की तारीफ के दीगर जुमले कह देते थे, اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें बजाय मांगना नहीं है अल्लाह की तारीफ है, वो तारीफ कायम मुकाम है दुआ की। तो फरिश्तों ने क्या किया अगर ये मान लिया जाए तो उन्होंने फिर बात शुरू की और उन्हें दुआ मांगी कि अल्लाह ने उसे अपने कुल्ला शेर रहमत हो इंसान है परवरदिगार आपके आपकी रहमत और आपके इल्म ने हर चीज को ढांप रखा है। रब्बाना का लफ्ज है ना है ही बड़ी अजीब बात। कुरान करीम में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं आई है ना अक्सर वो बेशतर ही रब्बाना के लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा के लफ्ज नहीं है, रब्बाना के लफ्ज हैं। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ लीजिए रब्बाना फिर लना जुबाना, वो एपरदिगार बड़े बड़ी गलतियां लगुशें हो गई वही लम्बा फिर लना वतर हमना, और अगर आपने बख्शीश ना की और आपने मफरत ना की तो हम बड़े कताले में चले जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी ऐसे ही दुआ की और ने कहा कि रब्बी शराही सदरी वैसे भी अमरी अल्लाह मेरा सीना खोल दे ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ वो भी लम्बा नाम से शुरू होती है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआएं अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं अता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप दुआ मांगा कीजिए, और ये रब्बाना जो आखिरी ये रुकू है सूरह बकरा का उसमें देखें इसकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते थे मुझे ये पसंद है कि लोग दुआ मांगे तो अल्लाह के की रुबूबियत रब के मुतल्लिक कहें कि रब्बाना है परवरदिगार। इसलिए सूफिया कहते हैं कि असल में रब के मतलब पर गौर करना चाहिए, और रब वो है जो एक चीज को उठाता है और फिर कमाल तक पहुंचा देता है। तो आदमी चूंकि मांगता हर वक्त या किसी वक्त है जब वो किसी चीज का अरूज चाहता है इजाफा चाहता है किसी मुसीबत से बचना चाहता है तो इसके लिए अल्लाह ताला की बादशाही जिक्र करने के बजाय रबूबियत का जिक्र और रब होने का इकरार ज्यादा मौत है। क्योंकि दूसरी तरफ कुरान ने कहा है कि वजिल्ला अस्माउल हुस्ना और जितने अच्छे नाम हैं अल्लाह के हैं फदउहू बिहा अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारा करो। अब अल्लाह से जब मगफरत मांगनी है तो गफ्फार और गफूर और रहमान और रहीम ये कहे, अल्लाह ताला से इल्म मांगना है तो अल्लाह के नाम अलीम का विल करे। जब अल्लाह से कोई हाजत और जरूरत मांगनी है तो रब्बाना ही कहना चाहिए ना कि अदब ए परवरदिगार जो दर्जा बदर्जा चीजों को बढ़ाता है हत्ता के कमाल तक पहुंचा देता है। इसलिए रब्बाना का लफ्ज कुरान में बार बार अंबिया के सलाम क्या मां आएगा, फरिश्तों ने भी सूरत इख्तियार की है, वो कहते हैं रब्बाना मंत्रे का कुल लशी रहमतम वहीमा, ए परवरदिगार हर चीज पर तेरी तेरी रहमत और तेरा इल्म गालिब है, मुस्तक है तेरी रहमत में और इल्म में। अल्लाह की दो सिफतों का जिक्र किया, सिफतों ने ऐसे जिक्र किया जैसे अल्लाह ताला कुल का कुल रहमत है और अल्लाह कुल का कुल इल्म है। बड़ी मोहताज बात है, अल्लाह को कुल और जिस से ताबीर नहीं किया जा सकता। इसलिए کہ کوئی جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی نا تو پھر خدا محدود ہو گیا اور پھر کفر ہے محمد اللہ. اس لیے یہاں پر پہنچ کے مفسرین وہ کہتے ہیں کیا کریں, یہی کچھ بولنا ہے, الفاظ بھی ایسے نہیں ہیں زبان میں, جائیں کہاں؟ تو انہی محدود الفاظ کے ذریعے بات کرنی ہے. تو بات یہ کرنی ہے کہ فرشتوں نے کہا ہے رب رحمت سراسر تو رحمت ہی رہتا ہے. صوفیہ پر مسلک یہ, صوفیہ میں بہت سے ہیں جو اللہ کی صفات عین ذات کرا دیتے ہیں, وہ ذات کی صفات میں فرق نہیں کرتے, معتزلہ بھی ایسے کرتے ہیں. اس لیے فقہا نے اس مسئلے میں کچھ نرمی رکھی ہے عقیدے میں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ذات کا حصہ بھی مانتا ہے وہ اتنی سستی کی بات نہیں. سارے صوفیہ یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رحمت اور علم اللہ کی ذات سے کچھ الگ چیز ہے. تو یہ بحث ہے جو تفصیل سے کی ہے, جہاں پر ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ عقائد میں, ریڈیو پہ بھی آ گیا تھا, سب چیزیں ہو گئی تھی, حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی پچھلی تھی. فرشتوں نے کہا اے پروردگار تو رحمت ہے سراپا اور اے رب تو علم ہی علم ہے. رحمت کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا اور اللہ کے علم کا ذکر اور رحمت کو دونوں کو انہوں نے جوڑ دیا. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کو جوڑتا ہے خلق کے ساتھ, اللہ من خلق, بھلا وہی نہیں جانتا جس سے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کی صفات میں سب سے کمال کی صرف جو مانی گئی ہے, بہت سے لوگوں نے کہا ہے ارادہ اللہ کے کمال سے, اللہ نے ارادہ کر دیا کہ کائنات کو بنائے ہوں گے. تو آپ کی سوچے نا, یہ زمین, کہکشاں, ستارے, عرش, فرشتے, آسمان, چاند, سورج, میں اللہ کے ایک ارادے کا نتیجہ, ارادہ فرمایا کیسے کائنات ہونی چاہیے, کیسے زبردست اختیار. اور محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کا علم ہے. اللہ تعالی کا علم ایسی کمال کی صفت ہے کہ شاید کوئی صفت اس کے مقابلے میں نہیں ہے. علم اتنی بڑی چیز, اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کلام کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا اور اللہ نے ان سے باتیں کی. اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان پر یہ سوف ابراہیم اور موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام سے اتنا کلام ہے, اتنا کلام ہے کہ پوری تورات دے دی, اس کے باوجود خدا کہتا ہے میں اور صحیح پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. اسی لیے بڑی اسرائیل میں یہودیوں میں بے شمار پیغمبر آئے, اور یہ یہودیوں کی جو سوچنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس صلاحیت کے بڑھنے کی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو جب نبی آتے رہتے ہیں نا قوموں میں انبیاء علیہ السلام, تو قوموں کا عروج ہو جاتا ہے. تو اللہ نے وہاں پر کلام کی صفت کے ساتھ انہیں جوڑ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے برکت کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا. قرآن بار بار کہتا ہے نا برکت کیا ہے, زیادتی, اضافہ. مثلاً ایک آدمی سو روپے میں ایک چیز لاتا ہے اور دس دن چلتی ہے, دوسرا آدمی وہی سو روپے وہی چیز لاتا ہے پندرہ دن چل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی دس کی بجائے پندرہ دن, پانچ دن کے لیے برکت ہو گئی. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے, اس بچے کو ہمیشہ ساتھ لے جاتے تھے. مہینے میں جو سودا خریدنے جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے ساتھ چلو, چل جاتے تھے وہ. ایک دن انہوں نے کہا چچا اب دونوں نہ مجھ سے سامان اٹھواتے ہیں نہ کوئی سودا کرواتے ہیں نہ کوئی کام ہوتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی بس گئے اور آگے میرا کیا کام ہے, کیوں مجھے لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں برکت کی دعا دی, ہم اس لیے لے جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لے جانے کی وجہ سے برکت ہو جائے. یہ وہ رد ہے کہ جو آ भी कहते हैं ना कि बरकतें नहीं होती हैं, बरकतों का क्या है, आप अपने घर में कुरान पढ़ते हो तो इसमें कौन सी बरकत आ गई, नीचे का में और हजरत से सीखा है तो कौन सी बरकत आ गई, उन्हें इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि बरकत कैसे आती हैं और अफराद के साथ उनका वजूद कैसे होता है। बस आंखें बंद करके अंधा दूर भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। यही तालीम और इल्म है। हजरत का हाल है कि पाकिस्तान में बैंगे रहमतुल्लाह का लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं, कुछ नहीं देखते। मुनिका ने क्या कहा, काफी नहीं किया था, और जगह क्या है रहमतुल्लाह, वो भी इसी तरह चलते जाते। इतने कई रहमतुल्लाह का काम उनके शागिर्द हैं। तो ये जो है ना, ये चीजें ऐसी हैं कि आदमी दूसरी तरफ भी गौर करे कि उनके पास कोई दलील है या नहीं है, वो किताब सुन्नत से कोई बाहर चले गए हैं, क्या हो गया है। ये वो जो 17वीं 18वीं सदी के आखिर पे चीजें उठती हैं ना उम्मत में, ये वहाबियत, इस पर गौर कर लेना चाहिए। इसने उम्मत को कितनी तबाही तक पहुंचाया और कैसे टुकड़े हुए। तो बरकत ऐसे हो जाती, वहाबियत ये काम साथ ले जाते, उसमें बरकत थी। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बरकत के साथ जोड़ दिया, इसी की जब बस्ती रुकी है तो अल्लाह ने फरमाया हूं जमीन पे रुकी है, चाहिए बरकत ना चाहिए, मेरी बरकतें तुम पे नाजिल हो, तुम्हारी औलाद पे मेरी बरकतें नाजिल। खुदा की बरकतें थी जो 100 से भी कम आदमी थे और अब दुनिया में देख लो अरबों तक आबादी पहुंच गई। खुदा बरकत ना देता तो 100 आदमी की नस्ल चलती तो कितनी चलती। और नबी को कान की नस्ल सिर्फ के साथ हो रहा है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात अल्लाह की सबसे बड़ी सिर्फ इल्म है ना, अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत को इल्म के साथ छोड़ दिया। इसलिए पहला दस जो नाजिल किया है ना, फरमाया इस पर आप पढ़िए, ये नहीं कहा कि अल्लाह की तौहीद, ये भी नहीं फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी नहीं फरमाया उठिए और तब्दील कीजिए, कोई दस नहीं कहा, ये भी नहीं फरमाया मुझसे दुआ मांगो। पहला नफ जो नाजिल फरमाया था इस पर आप पढ़िए। इसलिए जो लोग जानते हैं ना कि इस उम्मत का अरूज और जवाल इल्म के साथ वाबस्ता है, वो कहते हैं पढ़ाओ लोगों, कहते हैं पढ़ो, क्योंकि जब तक इल्म रहा उम्मत अरूज पे रही, जब इल्म खत्म हो गया उम्मत कभी सवाल हो गया, क्योंकि अल्लाह ने इस उम्मत का ताल्लुक इल्म से जोड़ दिया था ना। अब अल्लाह की शान है कि लोग महीने में 2-3 हजार से भी नहीं पढ़ते, हैरत होती है, और हफ्ते में 5 लाखों से भी नहीं पढ़ते, करते क्या है, जीते कैसे हैं, और फिर भी इन सब को उम्मत का अरूज चाहिए, दुआएं भी हैं, लगे हुए भी हैं, वो जो इल्म है जो असल थी वो उस चीज की तरफ नहीं आते। तो भला बताओ जो आदमी साल में 20 हजार से ना पढ़े और साल में उसे तालीम में इजाफा ना हो, रोज 2-4 नए मकसद न पता चले, ये लोग कैसे करेंगे और कैसे काम। इसके फरिश्तों ने कहा रब्बना वतर कफिल लकई रहमतन व इल्मा, अल्लाह तू सराफा इल्म है, रसूल हम रहमत ही रहमत है इल्म इल्म है। देखिए दो चीजें आई थी पीछे, एक ये कि फरिश्ते जो मिनून ईमान लाते हैं, यह सब फिरून इस्तेफार करते हैं, किसके लिए, ईमान वालों के लिए ना, तो ईमान वालों के लिए मगफरत मांगनी थी ना उन्होंने, मगफरत का ताल्लुक खुदा की रहमत से था उसे दे आए, और ईमान वालों के गुनाहों का ताल्लुक खुदा के इल्म से था इस चीज से भी जिक्र कर दिया। अल्लाह आपको इन ईमान वालों के गुनाहों का इल्म है, बाकी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रहमत की सिर्फ प्रेम की मगफरत। कैसी लॉजिकल दुआ है, कैसी हिकमत है कि फरिश्तों ने उन अल्लाह की दो सिफात का जिक्र किया, और अल्लाह का इल्म कोई हद नहीं उसकी, अल्लाह का इल्म इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि वसीलिया आई, फते बुखारी में आया मूसा अकीदा रहमतुल्लाह दोनों जा रहे थे, तो होते हैं आप जानवरों के परिंदों को देखा होगा जरा सी देर के लिए समुद्र के सूखे और पानी पीते हुए जाते हैं, तो चिड़िया ने गौसा लगाया चोट पे पानी भरा, मुझे इतनी भी प्यास होगी, तो फिर उसने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, उसने कहा माना करता हाजर रसूल मिन हाजर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चिड़िया ने समुंदर से कितना कम किया, और फिर उन्होंने कहा मूसा आपका इल्म मेरा इल्म और जितना इल्म कायनात को खुदा ने दिया है सारा इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है जितना चिड़िया के पानी पीने का और समुंदर का आपस में मुआवजा करे इससे आपने नजर अल्लाह बड़ी अच्छी बात है जितना ये कहते हैं समुंदर की कोई हद तो है ना कोई पूल हद तो है ना अल्लाह के लिए तो हद ही नहीं इसीलिए अल्लाह का इल्म वो बेहद वक्त है ये नहीं है कि अल्लाह को 180 का इल्म तो 90 का नहीं था 90 का आया तो 2000 का नहीं अल्लाह ताला का इल्म बेहद वक्त है एक आदमी को उस वक्त ही जानता था जब इसने कायनात पैदा की और उस वक्त के हालात भी जानता था जब इसे जन्नत और जहन्नम में भेजे इसीलिए अल्लाह को जो मेराज हुई ना तो मेराज में आपको दिखाया गया ये सूद खा रहा था इतना काम इतना काम इसका आजाद तो कहते हैं इससे सवाल बड़ा लॉजिकल मंतकी सवाल है कि उम्मत बाद में बनी वो सूद खाने वाला हजार साल बाद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आजाद अल्लाह ने कैसे निकाल दिया क्योंकि कहते हैं अल्लाह के इल्म में वो चीजें मौजूद थी एक वजूद जहनी और एक वजूद खारजी सुन्नत मंतकी की किताब है ना उसमें आता है कि किसी चीज का जहनी वजूद हो और फिर खारजी वजूद हो तो कहते हैं कोई चीज ऐसी नहीं है कायनात में जिसका खारजी वजूद हो और जहनी ना हो मतलब जहनी तौर पर आप सोचते हैं कंप्यूटर तो आपके जहन में समस्या है उसका वजूद खारिज में भी मौजूद है कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका खारिज में वजूद हो और जहन में ना हो कोई नहीं सकता जहनी वजूद होता है खारजी वजूद होता है कई बार तो होता है जहनी वजूद होता है खारजी आदमी देखता नहीं मतलब फर्ज कर लीजिए आदमी गारुकाही का जहनी वजूद है गारुकाही बड़ा सुंदर होगा उसे देखा नहीं है देखे तो जब जाएगा तकलीफ करेगा तो देखेगा भी तो कहते हैं आला क्या जो इल्म है ना उस इल्म का सिरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी से गुजारे पाके मिला दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों साल पहले देख लिया कि सुन्नती को अजाब हो रहा है ये कुरान पढ़ रहा है ये बिलाल उनके अल्लाह जन्नत में ये फलाएं ये फलाएं अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते ही बात करते हैं कि रहमतम व इल्मा ऐ रब तेरी रहमत और तू तो सरासर रहमत है ऐ रब तू तो इल्म ही इल्म खुदा के इल्म से क्या कहें कुरान जैसी किताब अल्लाह ने नाज़िल की इल्म अल्लाह ने जो दिया है और जो इल्म इसी लिए इस उम्मत का नाता जो कि इल्म से जोड़ा है ना तो कुरान कहता है वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा और अल्लाह से दुआ किया मांगा कीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जमा बनामा बढ़ता जमा बनामा बढ़ता था हर आने वाला दिन उनके इल्म में इजाफा करता था अल्लाह की मार्फत में इजाफा करता था इसीलिए शम्स सवेर कहते हैं जब वहां रूम से मिले कहते हैं मुहक्किकीन जानते होंगे इस रिवायत की क्या हकीकत है इन जवाब में कहती है वो और कहते हैं कि शम्स सवेर से आए थे जो कुछ मसनवी में है ना वहां रूम ने कहा इबन अरबी रहमतुल्लाह अगर आदमी गहरी नजर से पढ़े तो उसी का अर्थ क्या आगे पड़ता है ऐसी बड़ी चीजें तो उन्होंने मारूम पढ़ा रहे थे तो वो हशम सदरेन भी आए और वो फकीर आदमी थे उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा रहे हो तो उन्होंने कहा नील मत कि तू नहीं जान ये इल्म है फकीर आदमी तुम्हें समझ में आने वाली बात नहीं तो उन्होंने हाथ मार के सारी किताबों की मस्जिद की तालाब में गिरा दी तुम्हें बड़ा गुस्सा आया और उनको पढ़ा रहे हैं इसके खाते तो गुस्से में उठ खड़े हुए तो उन्होंने कहा जल्दी ना करो और फिर किताबें उसी तरह कुछ निकाल के उनके सामने तो और उनकी आंखें खुली रह गई उनका ये क्या है उनका इनानत के तू नहीं जाने ये वो है जो तू नहीं जाने तो कहते हैं मारूम उसके बाद चल पड़े कि बात इसकी तो तहकीक है मुहक्किकीन करेंगे जिस तक तक है लेकिन ये शहाबुद्दीन सरवंदी रहमतुल्लाह के साथ पेश आए साहिब रबारत मारे सिलसिला सरवंदिया के बानी फलते खाजा बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के लिए मुर्शिद वो इतने बड़े आदमी थे वो कहते थे मैं जवानी में एक जगह लिखते हैं मैं जवानी में हमेशा फलसफा मंतिक की चीजें पढ़ता था आप समझ इस जमाने की फिजिक्स के कहते हैं मेरे चचा मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश कर रहे थे मुझे हमेशा समझाते थे कि बेटे ऐसी चीजें पढ़ो जो अल्लाह के यहाँ काम आने वाली उस जमाने के सारे लड़के यही पढ़ते तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि चचा किस चीज की तरफ बुलाते हैं फैशन आजकल यही पढ़ने का है तो कहते हैं कि एक दिन चचा ने मुझसे कहा मैं आज ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं जहां जरा ख्याल करना वहां कभी-कभी दिल की चीज की इत्तला हो जाती है ये अल्लाह का एक कायदा है खुदा ताला बाबुकार इंसानों को अल्लाह मुरब्बी है ना रब है ना तर्बियत करता है ना अपने बंदों को सही राह पे रखता है बंदे ने आदमी से मांगा होता है कि सही राह चाहता हूं तो अल्लाह शेख के बाद उस मैदान में फंसा देता है जिस मैदान के लिए हमेशा इंतजार करता होता है तो खुदा उस हुजूर को तोड़ देता है कि तुम ठीक नहीं थे वही बात है कि वो चीजें तुम नहीं जानते तो उन्हें बहुत गौर था अपने अलूम और अपनी याद और इन चीजों पर और सूफिया की जाहिर है कि ऐसी रगबत नहीं थी खुदा ने भी वहां बांधा कि पता चल जाए कि चीज क्या है तो उन्होंने कहा बेटे ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जो अल्लाह का ऐसा बंदा है कभी कभी उसके दिल के इरादों की इत्तला हो जाती है तो जरा दिल को नजर में रखती हूं और आगे जब मैं पहुंचा तो शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह ने मुझसे पूछा कि लड़के क्या करते हो तो मैंने उन्हें बताया कि ये पढ़ा थी जिस किताब का मैं नाम लेता था शेख तो पढ़े लिखे थे शेख तो बड़े आदमी थे वो उस किताब की और ज्यादा चीजें का नाम लेते थे तो बड़ा मुताबिक बड़ा खुश हुआ कि शेख पूछती है लेकिन बहुत पढ़ा लिखा तो फिर उन्होंने भी अपने करीब बिठा दिया और इससे अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और फिर उठा शहाबुद्दीन कलवर्दी रहमतुल्लाह कहते हैं थोड़ी देर बाद तो मैंने गौर किया तो मैं बिल्कुल खाली हो गया एक किताब का नाम याद नहीं रहा था मैं चीख पड़ा मैंने कहा शायद ये क्या किया आपने यानी सारी जिंदगी की अब तक की मेहनत ये क्या किया तो उन्होंने कहा बस शहाब ऐसे ही पढ़ा था कि अल्लाह के बंदा हाथ रख दे तो मिट जाए वो चीज पढ़नी चाहिए जो कोई आपकी छीन न करे परमात्मा से फिर मुझे ख्याल आया और मैंने गायब की दरखास्त की और फिर सारी जमीन तो ये चीजें वो कहने की बात ये थी कि वो शख्स रेजी जब आए वहां रूम के पास उन्होंने कहा ये चीजें तुम नहीं जानते उन्होंने कहा रूमी इतने पढ़े लिखे हो ये बताओ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मासूम थे या नहीं मासूम थे क्या लिखा कितने बड़े आलिम है कि बताओ वो फिर रोजाना 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिगफार क्यों किया करते तो मालूम है वो चीजें जो किताबों में होती हैं बिशन रहमतुल्लाह अलैह ने उन चीजों को नहीं माना मैंने कहा ये गलत है ऐसी बातें हैं कोई हकीकी बात होगा तो उनका लोग आप होते हैं तो उनका मेरा ख्याल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरक्की इल्म और मारिफत में इतनी ज्यादा हर दिन होती थी कि जब पिछली मंजिल को सोचते थे तो अल्लाह से इस्तगफार और तौबा करते थे कि कोई आदमी उससे नाराज नहीं हो सकता उनका इसी रोजाना मुश्किल बात किया करते थे मगर यह ऐसा ऐसा जवाब है जो सूफिया के शौक का फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी रहमत और तेरा ही फिर इतना दीना था ऐसा बख्शते उन लोगों को जिन्होंने तौबा की वस्तकों सबील और अल्लाह जो तेरी राह पर चलते हैं अल्लाह उनको मुआफ कर जो तौबा करते हैं ऐ उनकी तौबा को कबूल कर कि इतने अच्छे लोग हैं इसी के अल्लाह ने कहा नम्मा युसु तवाबीन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो खुदा के हुजूर बहुत तौबा करने वाले होते हैं तो एक बंदा खुद तौबा करता है गुनाह से ऊपर के फरिश्ते की बारिश कर देते हैं कि अल्लाह माफ फरमा दे वाकई वो तौबा करता है ये मोमिन की शान है ये जो आयात हैं ये हमने एक आदमी को देखा हमेशा इसे पढ़ते थे और वहां मुझे सही नजरी जब पढ़ते थे इन आयात को रो देते थे और आखिरी मरतबा रमजान में उनकी खानका शरीफ में जो हाजिरी हुई बांगा बरेली में तो सुबह चार के वक्त ऐसे उनके लिए बड़ा कलम बिछाया जाता था हजरत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे कई कई बार ये आया पढ़ते थे अल्लाह जी ने रामदून अल्लाह की मन करो जब यहां पढ़ते थे वक्त ही उससे कि आज और ऐसा गुनाहों से इनकी हिफाजत करवा रो देते हमेशा ही आया पढ़ते थे और रो देते थे ये वो चीज है कि अल्लाह जिन लोगों ने तौबा किया है फिर इख्तियार करते हैं अल्लाह ने मुआफ करवा फस्तबर उस दीलत और अल्लाह जो तेरी राह पर चलते हैं ना अल्लाह उन्हें भी मुआफ तो जो इसका मतलब है जो खुदा की राह पर चलता है कुछ ना कुछ कमी बेशी हो ही जाती है खुदा का पूरा एक निजाम है हम नहीं जानते अगर ये नबूवत इत्तला ना देती कि तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरिश्ते मांगते हैं हमसे और सिफारिश तुम्हारी करते रहते हैं कौन जान सकता था इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने कहा حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا یہ حجر اسود جسے تم بوسہ دیتے ہو قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دے گا اور اس حجر اسود کی ایک زبان ہوگی قیامت کے دن. ابن عربی نے ایک جگہ لکھا ہے شاید کہتے ہیں میں جب حجر اسود پہ گیا تو میں نے حجر اسود کو چوما اور میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں نے دیکھا حجر اسود نے ایک سوراخ کر دیا اور جو کلمہ میرے منہ سے نکلا تھا وہ نور کی صورت میں ایک لڑی بن گیا اور وہ نور کی لڑی جو تھی دیکھتے ہی دیکھتے میرے گول گیند کی طرح بن گئی اور وہ جا کر تقریباً ایک گرد اس پتھر کے اندر گھس گئی اور پتھر اوپر سے بند ہو گیا. تو میں بھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیت اللہ نے مجھ سے کہا بس یہ تمہاری شہادت جو ہے یہ محفوظ کر لی گئی ہے قیامت میں اللہ سے کہوں گا کہ تمہاری شہادت کی اس کی توحید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا. وہ کہتے ہیں مجھے کس دن پتا چلا کہ جو بھی حضرت کو چھوتا ہے اس کی شہادت کیسے قبول ہو جاتی ہے وہ چیز میرے لیے محفوظ ہو. اللہ کا ایک نظام ہے ہم نہیں جانتے لیکن بہت سی چیزیں پیچھے کہتے ہیں وہ سب سے بھی اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں نا ایسا ان کو معاف کرنا پھر کیا ہوا وقت مزار الرحیم اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے کرنا ہوگی. اس سے پتا چلتا ہے کہ دیکھو تین دعائیں انہوں نے مانگی کہ فرشتے جو دعا مانگتے ہیں بڑا سفارش بھی کر دیتے ہیں پہلا ایمان والوں کے ساتھ پھر اس پہ بھی نہیں اور کہتے ہیں ربنا وارثنا الجنۃ یاد ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار جن تیرے ایمان والے بندے یہ توبہ کرنے والے یہ تیری راہ پر چلنے والے اللہ نے اس جنت میں بھیج دے جو اجن ہے بڑی جنت باغوں میں اللہ کی واسطا ہوں جس کا اللہ اپنے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. اور پھر یہی نہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ منصدہ ہمیں نہ اور اللہ ان توبہ کرنے والے یہ تیری راہ پر چلنے والے ایمان والے جو ان کے باپ دادا پردادا یہ لوگ نیک تھے نا اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں دیکھتے اور ازواجین اے اللہ ان کی بیویوں کو ان کے دوستوں کو دونوں گھر میں کیے گئے پر جو ذریاتین پر اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں بھیجتے ان کا انتقال عزیز الحکیم اللہ بڑے والد ہیں بڑے حکمت والے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک کی نیک بندے کی اولاد کا ہونا یا اولاد کا نیک ہو جانا دونوں کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. پھر اس سے کہتے ہیں اللہ ان کے والدین کو بھی جنت میں بھیجتے پھر کہتے ہیں اللہ ان کی اولاد اس کو بھی جنت میں بھیجتے تو والدین اچھے ہوں تو بھی اولاد اچھی ہو. آپ نے کتنی مرتبہ شاید کیا تھا نا کہ حضرت معاملہ کا بدری احمد اللہ کے والد حبیب اللہ صاحب اسکول ماسٹر تھے پڑھاتے تھے اور وہاں فضل الرحمان صاحب مراد آبادی رحمت اللہ سے جا کر بیٹھ ہو گئے اور فضل الرحمان صاحب بن مرادی والا بن مراد آبادی رحمت اللہ نے ایک کہا کہ آپ کے جب سے امجد سے دلہا آئے تھے اور فرمایا میرا بیٹا تمہارے پاس آیا اس کا خیال رکھنا. تو ہم نے جب یہ پڑھا تو ان کی خیال آیا کہ حضرت کے کون تھے دادا ہوں گے پردادا ہوں گے. پڑھنے سے پتا چلا کہ سولہویں کشت میں تھے وہ نور الحق صاحب اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. سولہویں کشت سے ایک آدمی کی روح یہاں آ کر کہتی ہے شیخ کو کہ میرا بیٹا آ رہا ہے ذرا اس کا خیال رکھنا. یہ نظام تمہارے حافظ کے بعد کہتے تھے اس کے بعد حضرت میرا بڑا خیال کرنے لگے تھے. یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی اولاد میں آ جانا اور پھر وہ اولاد نیک ہوتے. فرشتے کہتے ہیں چھوڑا بھی تھی ہوگی نہیں فرشتے ان کا منصب ہم ہی نہ باہر اللہ ان کے باپ دادا جو نہیں تھے وہ ازواج اور ان کی بیویاں یا ان کے دوست ازواج کا دو مقدر ترجمہ کیا گیا ہے. اسی لیے حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن جس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے ہم لوگ وہ تھا جس دن کسی آدمی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ اتنے نیک اعمال تو میں نہیں کر سکتا نہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں لیکن قیامت میں میرا کیا بنے گا میں گناہگار آدمی ہوں حکومت کا ہی ہے لیکن اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معامل آپ کا انسان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی خوشی تھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ یقین ہم اچھے نہیں ہیں لیکن قیامت میں حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا کہ محبت ہے. اللہ نے کہا رشتے کہتے ہیں کہ رب جو ان کے دوست ہیں رب جو ان کی ذریت اولادیں ہیں اے اللہ بڑا غالب ہے مجھ سے یہ اور اے اللہ یہ جو توبہ کر رہے ہیں نا جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھ سیئات سیئات کے دو ترجمے کی ہے یا تو ان سے یہ دعا مانتے ہیں کہ اللہ اب جب اس نے توبہ کر لی ہے اب جو تیرے راستے پہ چل پڑا ہے تو اے اللہ دنیا کی زندگی میں اسے گناہوں سے محفوظ کر پاتے اللہ کہ اللہ گناہ نہ کرے اقرار کر اور یہ کہہ کے فرشتے فوراً پہنچے دوسری طرف اور انہوں نے کہا ہم کبھی سیاحت یوم دن اور اللہ قیامت کے دن وہ جو سختیاں ہیں نا انہیں یہاں گناہ سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن ان گناہوں کا بوال وہ جو سختیاں اے پروردگار اس کے دین نے بچا فقط رحم کا اللہ تمہیں یقیناً اس پر مہربانی کی جسے تمہیں ان گناہوں کے بوال سے بچا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وہ اس سے کہ آپ اور اللہ جو بھی تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں کسی مومن کو اس کی زندگی میں اللہ ان کو سلامت ہے اللہ ان کی زندگی سے وہ تکلیف دہ چیزیں ہٹا دے اور حقیقتاً تکالیف من کا کس سے یہ آپ یوم دن قیامت کے دن کی تکلیفیں اللہ جس کو آپ نے اس دن ان تکلیفوں کو ہٹا دیا قیامت کے دن میں فقط رحم کا اہل حقیقی رحمت تو تیری اس پہ ہوئی فضالی کا اور بہت العظیم اور اللہ یہ ہے وہ بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی اے پروردگار ان مومنوں کے ساتھ ہے پھر تشریف انشاءاللہ